वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ आज सुबह हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला प्रश्न जो शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछा और सुत गोस्वामी का उत्तर उस प्रश्न के प्रति के विषयों का पहला प्रश्न था कि तत्र तत्रंजसा युष्मत् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकांतत श्रेयस्तन्न संसतुमर्हसि अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि में हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। एकांततः श्रेय, श्रेय मतलब अंततः भलाई इस चीज में है, और एकांततः एकांततः मतलब हरेक व्यक्ति के लिए, किसी के लिए सिर्फ कुछ लोगों के लिए, हरेक व्यक्ति के लिए। तो इसके उत्तर में सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। सवै पुंसाम, हरेक जिसने भी मनुष्य होने को प्राप्त किया है, परो धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म वो है जिसके आचरण करने से, जिसके पालन करने से, ये तो भक्ति ही भगवान के प्रति प्रेम में ही भक्ति उत्पन्न होती है। अधोक्ष जी, भगवान जो इस भौतिक संसार से परे हैं उनके प्रति जो भक्ति उत्पन्न हो, अहैतुकी अप्रतिहता, और जिस हद तक वो भक्ति बिना कोई हेतु के, बिना कोई भौतिक आदान प्रदान की इच्छा से और अप्रतिहता अखंड भाव से, भौतिक किसी स्थिति में भी अगर वो जारी रहे, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, वो आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त करता है। और सुबह हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार ये धर्म क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अंत में वो कहते हैं अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। अतः द्विज श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सारे एकत्रित हुए ऋषियों, कुंभी सारे लोगों का वर्णाश्रम विभागशः अपने अपने कर्तव्यों का, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य जो भी हम लोग अपना अपना धर्म निभा रहे हैं वर्णाश्रम में, उसकी परिपूर्णता क्या है, हरितोषण, भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि अंततः भगवान को हम अपने कार्यकलापों के द्वारा, अपने विधि विधानों के द्वारा जो भी हम पालन कर रहे हैं प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। जैसा खाना खा रहा है पर अगर पेट में नहीं गया हो और कहीं गया तो पूरे शरीर को खाना नहीं मिलेगा, तो सबसे भेद हरितोषण। तो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, कहानी क्यों ना हो, जब तक वो सारे सृष्टियों के स्रोत जो उद्गम भगवान है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, उनको प्रसन्न नहीं करता है, तब तक वो श्रमये वही केवलम श्रम हो जाता है। तो ये उन्होंने बता दिया। और जिस हद तक वो अहेतुकी है और अप्रतियता है, तब तक वो प्रसन्न करेगा। अब दूसरा प्रश्न ऋषियों का ये था जो आज हम चर्चा करने वाले, कहते हैं प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् निवेदनाः मंदा सुमंद मत योगुंद भाग्य उपद्रुता। कि हे ऋषिवर, प्रायेण प्रायशः इस कलयुग में अल्पायुषः, इस कलयुग जिस कलयुग में हम रहते हैं उसका लक्षण क्या है, अल्पायुषः, आयु लोगों की बहुत, अवधि जो है जीवन की अवधि बहुत कम होते जा रही है। ऐसा बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब 20 साल का कोई रहेगा तो हम कहेंगे बाप रे 20 साल अभी तक ठीक ठाक है, जिंदा है, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको, पेट में अभी तक दर्द नहीं शुरू हुआ, परवाह नहीं, अखबार में उसका नाम आएगा। प्रायण अल्पायुष, आज हम देखते हैं 40 साल के बाद ऑफिशियली बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो प्रायण अल्पायुष, लोगों की आयु अवधि जो है कम होती जाएगी धीरे धीरे। कलावस्मिन् निवेदनाः, और छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर, उतनी गंभीर चीज है ही नहीं पर उसके ऊपर इतना झगड़ा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक परिवार दूसरे परिवार का, एक जाति दूसरे जात का, एक समाज दूसरे समाज, एक राज्य दूसरे राज्य, एक देश दूसरा देश, अभी तक एक ग्रह और दूसरे ग्रह का बीच में शुरू नहीं हुआ है, प्रगति करेंगे तो वो भी हो जाएगा, पर ये स्वाभाविक है। कलावस्मिन् निवेदनाः, छोटी छोटी एकदम नगण्य चीजों पर बड़े बड़े झगड़े, कलावस्मिन् निवेदनाः। फिर मंदा, मंदा मतलब आलसी, बहुत आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत आलस्य है लोगों में, इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है, और अगर इच्छा भी हो गई तो उतना ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। छोटी छोटी भौतिक फायदा के लिए देश छोड़ के दूसरे देश जाएंगे, एक नगर के एक ओर से दूसरी ओर तक जाएंगे 8-8 घंटे, पर आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए एक कदम भी लेने के लिए हिचकिचाएंगे बाद में कभी। मंदा सुमंद मत योग, सुमंद मत योग मतलब अगर कोई प्रगति करना भी चाहे तो अलग अलग प्रकार के मत के, भगवान का भक्ति ऐसा करना है, भगवान ये है, भगवान वो है, अलग अलग गलत फहमियां, 50 लोग 50 चीज करेंगे और विचलित हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। सुमंद मत योग, और मंद भाग्य, और इतना दुर्भाग्य है कि बस शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आदमी को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, और इसके ऊपर उपद्रुत, हमेशा चिंतित रहता है आदमी। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत फेमस है बड़े बड़े नगरों में, मुंबई में इत्यादि। स्ट्रेस मतलब तनाव, ये सबसे बड़ा बीमारी है। एड्स उतना बड़ा बीमारी नहीं है, कैंसर उतना बड़ा बीमारी नहीं है। इस शताब्दी में स्ट्रेस जो है, तनाव, मानसिक तनाव बहुत बड़ी बीमारी है। सब बहुत लोग, कितने लोगों को मालूम ही नहीं वो बीमारी है, इतने स्ट्रेस में है वो, उनको कोई बताए तो भी टाइम नहीं उनके पास सुनने के लिए, इतने तनाव में रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि तनाव क्या होता है। पर अगर ध्यान से सुने वो तो बोलते हैं ये तो सुन पैदा होते ही मैं इसी स्थिति में रहा हूं, हमेशा आदत सी हो गई है तनाव में रहना। तो इस तरह से उपद्रता, और ये स्थिति होने के कारण ऋषि शौनकादि ऋषि और एक प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, भूरीणी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानी विभागशः अतः साधोत्र यत् सारम समृद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सबको अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तृप्त हो जाए। भूरीनी भूरी कर्माणी, बहुत सारे शास्त्र हैं और बहुत सारे शास्त्रों में कई सारे पुराण, कई सारे उपनिषद, कई इतिहास, महाभारत, रामायण, 18 पुराण, फिर 108 उपनिषद, 4 वेद, क्या क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, तो सबको सीख पढ़ना है तो संस्कृत सीखना है। संस्कृत सीखने में तो 11 साल जाता है कम से कम, व्याकरण सीखने में तो 11 साल हो, उसके बाद सब पढ़ेंगे। और बाद में उपनिषद में एक शास्त्र, एक शब्द है कि तन एजति, भगवान भागते भी हैं, तन नहीं जति, पर अपने जगह से हिलते नहीं है, तब दूरे सबसे दूर में है, तब वंत के सबसे पास में वही है, तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंतर्गत वो स्थित है, तद सर्वस्य से बाह्यतः, पर किसी के अंदर नहीं, सबके बाहर है। तो भ्रमित हो जाता है आदमी कि है क्या, ये भाग नहीं रहा है, खड़े भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, चलता भी है, नहीं चलता भी है, सर के ऊपर वो बोलते दीवार पे सर मारने के बराबर। संस्कृत तो सीख लिया पर ये व्याकरण तो समझ में आ गया, ये क्या समझे, कैसा समझा जाए। तो इतने सारे शास्त्र और इतने सारे शास्त्रों में इतने सारे अलग अलग मार्ग बताया गया, कर्मकांड बताया गया, ज्ञानकांड बताया गया, उपासना कांड, देवी देवताओं की पूजा बताई गई है, बहुत सारे रीति रिवाज बताए गए हैं, तपस्या अलग अलग प्रकार की बताई गई है, व्रत अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, यज्ञ अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के दान बताए गए हैं, अलग अलग समय पे कहां कहां क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के योग विधि बताई गई है, अष्टांग योग। अब कौन कौन सा हम करें, कहां कहां जाके पूजा, कहां कहां दान, कहां कहां यज्ञ, कहां कहां योग, क्या क्या करें। पहले ही आयु है, बड़े सौभाग्य है तो 50 साल जीते, 50-60-70 साल तक, और 70 साल में ये समझते कि हम कौन है, समझते समझते हम कौन है, परीक्षा में आते आते तो 35 साल हो जाता है, और खास करके उसमें पहला 10 साल पढ़ाई का, 5 साल तो समझ में नहीं आता हम कौन है, बाद में समझ में आता है मैं सुरेश हूं, महेश हूं, दिनेश हूं। उसके बाद एडमिशन होता है केजी स्कूल में, उसके बाद होते होते 10वीं तक, और बाई चांस अगर बीच में फेल नहीं हुआ तो 16-17 साल तक एसएसएलसी हो जाता है, उसके बाद 2 साल 12वीं हो गया, 12वीं के बाद 15वीं अगर वो कोई इसमें गया, और उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत तकलीफ होता है, और उसमें पास हो गया तो उसके बाद इंटर्नशिप, ये सब करते हुए उसके बाद वो जब बाहर निकलता है फिर सेटल होने में, अच्छा कहीं जाओ मिलके सेटल होने में आधा जीवन से ज्यादा ही खत्म हो गया। उसके बाद तो उसकी चिंता रहती है कि सेटल होने के बाद अभी शादी करना है, उसके बाद बच्चे, उसका एडमिशन कहां किया जाए। तो 11 साल कहां निकालेगा संस्कृत पढ़ने के लिए, अपना सिलेबस खत्म करने ही टाइम नहीं, बहुत मुश्किल है। तो क्या क्या करेगा, कहां कहां नाक दबा के योग करेगा, कहां कहां दान देगा, कहां कहां यज्ञ करेगा, बहुत गंभीर सोचने वाली बात है। कलयुग में हमारी अवधि इतनी कम, बुद्धि इतना कम है, क्या क्या करेगा आदमी, कहां कहां जाएगा, कहां कहां घूमेगा। तो शास्त्र इतने सारे हैं और अलग अलग शास्त्र में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग बहुत सारी चीज बताए गए हैं, और उनको सीखने में कितने साल लग जाते हैं। और इसीलिए हमारा प्रश्न ये है, यत सारम, अतः साधोत्र यत सारम, हमको उसका सार निकाल, निचोड़ निकाल के दे दीजिए, बस क्रैश कोर्स। आजकल सब क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स मतलब 30 दिनों में सीखो सीरीज, छोटा छोटा पुस्तक आता है, 30 दिनों में सीखो तेलुगु, 30 दिनों में सीखो, 30 दिनों में सब चीज क्विक एकदम सैंपल, उसमें एकदम टैबलेट बना के खा लेने का, निकल जाने बस सब निकल आ जाएगा ज्ञान। कोई चीज लंबा चौड़ा नहीं चाहिए हमको, सब चीज ऐसा फटाफट, वही जमाना है, इसीलिए वही बोल रहे हैं ऐसा। तो ऐसा जमाना है कलयुग लोगों का, आयु कम है, टाइम नहीं है किसी चीज के लिए। तो क्रैश कोर्स दीजिए वेदों का, क्रैश कोर्स फटाफट सार बता दीजिए बस, दूसरे चीज के लिए टाइम नहीं। जिससे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्योंकि अंततः सारे वेदों का ज्ञान किसने दिया गया है? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा जो है पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, सच्चा सुख मिले और आनंद प्राप्त। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचे, जो भी हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि हम कैसे सुखी हो जाए, कैसे आनंद को प्राप्त करें, आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। बस ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमको सार बता दो। आप तो पढ़े लिखे हो, आपने पूरा रिसर्च कर चुका है सब चीज में, अब हमें बताइए। तो इसके उत्तर में ये शुरू करते हैं, उसका उत्तर 6-7 श्लोकों में दे रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, मैंने तो अभी बताया, अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारे सारे कार्यकलापों की परिपूर्णता है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है? तो वहां बताया गया है, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं, सात्वताम पति हैं। तो अगर जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, वेदांत सूत्र कहता है अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जन्माद्यस्य यतः, जहां से सब कुछ आ रहा है। तो अगर वही है तो एकाग्र चित्त होकर उसको प्राप्त करने को क्यों ना कोशिश करें। तो तस्माद एकेन मनसा, एकेन मनसा मतलब एकाग्र चित्त होकर, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके है कुरुनंदन जिसको नहीं मालूम जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सब जगह अलग 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 सब जगह भागता है, पर जिसको लक्ष्य क्लियर है एक जगह एक तक होकर भागता है, निकलता है। तो तस्माद एकेन मनसा, कहा भगवान जो सारे सृष्टि के स्रोत हैं, सात्वताम पति ही जो भक्तों के रक्षक हैं, क्या करना चाहिए? श्रोतव्य उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, कीर्तिगान करना चाहिए, ध्येय हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए, पूज्यस्य और उनकी पूजा करनी चाहिए, नित्यदा हमेशा सारे कार्यकलापों के द्वारा सततम कीर्तयन्तु माम यदन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासक। ये महात्मा का लक्षण है, भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं, ज्ञात्वा भूतादि मोहेन। तो ये चार चीज, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा, स्मरण करना उनकी, उनके बारे में श्रवण, उनके बारे में कीर्तन, उनके बारे में स्मरण और उनके बारे में उनकी पूजा करना, पूजा करना मतलब शरण जाना। दुर्भाग्यवश भगवान के अलावा और सब चीजों का हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करके शरण जाते हैं। आज के समाज में हम देखेंगे कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, कोई भी आप उठाइए, तो मैगजीन और न्यूज़पेपर मतलब क्या? किसी एक व्यक्ति के बारे में श्रवण और कीर्तन होता है। ऐसा
कभी कभी एक व्यक्ति को इतना पूरे अखबार में सारे मैगजीन में उसी का नाम उसी का नाम उसी का नाम, तो एक हफ्ते के अंदर वो तो पूरे विश्व भर में हीरो बन जाता है, सब उनका श्रवण करते हैं, सब उनके बारे में आज उसने क्या किया, आज वहां कहां गया, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। इलेक्शन के टाइम में कम से कम एक दो महीने तक पॉलिटिकल कोई आदमी का ही बारे में चर्चा चलता रहता है 24 घंटा। वो सीजन चला गया, क्रिकेट सीजन आ गया, तो उन लोगों के बारे में श्रवणम कीर्तनम ध्येयम पूजनम। वो सीजन चला गया, कोई स्पोर्ट्स आ गया, तो उसके बारे में श्रवणम कीर्तनम ध्येयम पूजनम। 24 घंटे उसके बारे में सुनेंगे तो स्वाभाविक उसके बारे में बोलते रहेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे जिसके बारे में बोलेंगे वो हमेशा हमारे मन में समा जाएगा, अंततः उसका पोस्टर हमारे घर में लगा के उसको हार लगा के पूजा करेंगे, उसके समान बोलना चलना उनके समान करना स्वाभाविक है। पर अंतर क्या है, अंतर यह है इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, बल्कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ही। और मतलब लॉन्ग टर्म देखेंगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको, और व्यक्ति बदलते रहते, ये बदला वो बदला वो बदला, कभी फिल्म स्टार कभी स्पोर्ट्स स्टार कभी पॉलिटिकल स्टार, आते रहते जाते रहते हैं ऐसे लोग। पर नित्य हमेशा एक ही व्यक्ति है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त रसामृत सिंधु में, नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। अरे हीरो को पूजा करना है तो असली हीरो को ढूंढो, नायकानां शिरोरत्नं, ऐसे नायकों का शिरोमणि को ढूंढो, कौन है वो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है सारे हीरो के सुपर हीरो, क्यों, भगवान स्वयं सारे अलग अलग प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसे लोग आकर्षित हो जाते हैं, सुंदरता से शक्ति से ज्ञान से वैराग्य से बल से, ये सब जो है अनंत काल से अनंत काल तक अनंत मात्रा में उनमें समाया हुआ है विराजमान है। यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुण, ऐसे महागुण जो है हमेशा विराजमान है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से करोड़ों करोड़ों सालों से वही हीरो रहे, धर्म संस्थापनार्थ या संभवामी युगे युगे, अलग अलग रूप में आए, अलग अलग रूप में, और आकर परित्राणा साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, अलग अलग अवतार लिए और इतने सुंदर सुंदर लीला किए हैं, उसमें कम से कम कुछ तो फायदा होगा। ऐसे लोगों के बारे में सुनने से क्या फायदा जो खुद मर रहे हैं बुढ़ापा बीमारी में खुद, अरे कोई डूब रहा है व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आ रहा है और उसको जाके आप पकड़ रहे हो, वो खुद डूब रहा है, वो किसको बचाएगा, डूबता व्यक्ति को पकड़ोगे तो तुम भी डूब जल्दी डूबोगे बस, क्योंकि वो पहले ही डूब रहा है और आपका बोझा ज्यादा तो जल्दी डूबेगा। तो सही में ऐसा व्यक्ति के चरण कमल का आश्रय लो, श्रवण कीर्तन ध्येय और पूजन के द्वारा जो समाज श्रिताये पद पल्लवम प्रवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, जिसके चरण कमल पकड़ो तो कम से कम भव सागर को पार कराएगा। उनके बारे में श्रवण, उनके बारे में कीर्तन, उनका ध्यान और उनका पूजन जो है वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगे तत्पत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माने के सोचना, क्या सबूत है कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन ध्यान और पूजन दिव्य है, क्योंकि भगवान जो है त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे हैं, शुद्ध है, और जब उनके बारे में श्रवण करते हैं उनके नाम गुण लीला में कोई अंतर नहीं है, वो जब हमारे कर्णों के द्वारा प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करती है तो हम भी दिव्य स्तर पर आ जाते हैं। जितना हम श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे ध्यान करेंगे पूजन करेंगे उस हद तक हम भी तीन गुणों से परे होकर उस स्तर पर माम चयो अव्य विचार है ना भक्ति योग है ना सेवते सगुणान समती देतान ब्रह्म भू जाए कल्पते, क्योंकि वो दिव्य है और उसका श्रवण करेंगे तो हम भी दिव्य स्तर पर आ जाएंगे, तीन गुणों से परे चले जाएंगे। तो ये करना है, यानी हमारे जीवन को ऐसा हमको अरेंज करना है, ऐसा चलाना है अपने जीवन को कि हर स्थिति में हर क्षण हर अवस्था में भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण, नाम गुण लीला इत्यादि का श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन चलता रहे, तो भक्ति है। गोपियां करती थी ऐसा, भगवान का ध्यान करते करते अपना काम कर रही थी, अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, वो लोग ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के हमेशा ध्यान करते बैठे थे, वो सब अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर हमेशा स्मरण भगवान का था, क्या भगवान को पसंद करेगा। तो क्या होता है जब ध्यान करना, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है जितने सारे रीति रिवाज बहुत सारे नियम बताए गए हैं, पर नियम का सार क्या है पद्म पुराण बताता है, पुराण वर्णन है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य जातचित सर्वे विधि निषेधासुर एतयोरेव किंकरा। बहुत सारे विधि और निषेध शास्त्र में बेसिकली दो प्रकार के वाक्य हैं, विधि और निषेध, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, पर ये सारे विधि और निषेधों का सार क्या है, सारे विधि जो करना है उसका उद्देश्य है स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण हो, जो अनुकूल है वैसा चीज करो, वो विधि है, और विस्मर्तव्यो न चातुर्य, कभी भी भगवान को हम न भूलें। सर्वे विधि निषेधास्युः, सारे विधि और निषेध एतयोरेव किंकरा, ये दो जो विधि निषेध है इनके किंकर है, अंततः इनका उद्देश्य यही है। यहां तक कि रूप गोस्वामी सारे शास्त्रों का निचोड़ निकालकर उपदेशामृत लिखे और उपदेशामृत में बताते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कावन्नये अखिलम् उपदेश सारम्। उपदेशामृत में सारे उपदेश का, जितने सारे वेदों में उपदेश है उसका सार निकाल के निचोड़ दे दिया है 11 श्लोक के अंदर बस, और 8वें श्लोक में कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना, भगवान के नाम रूप चरित इत्यादि का सुकीर्तना, और जब कीर्तन करेंगे, कीर्तन तब करेंगे जब सुनेंगे, क्या कीर्तन करेंगे जब तक सुने नहीं क्या बोलेंगे हम लोग, तो कीर्तना अनुस्मृत्यो, स्मरण ऐसा करना चाहिए जैसा हमने श्रवण किया है और कीर्तन किया है, अनुस्मृत्यो क्रमेण, तो ऐसा करते करते क्रमेण क्रमशः रसना मनसी नियोज्य, अपने जीवा को और अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं स्पुर, जिह्वा के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कैसे, जिह्वा हम लोग वचन ले लेना चाहिए कि जिह्वा से जो भी निकले वो कृष्ण के संबंध में निकले, और जिह्वा के अंदर जो भी जाए वो कृष्ण के संबंध में चीज ही प्रवेश करे। तो जिह्वा क्रमेण रसना और मनुष्य नियोज्य तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में स्थित होकर वहां जाके क्या करना है, तद अनुरागी जनानुगामी, भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं अनुगामी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए कालम नए, ऐसे ही हमारा जीवन को बिताना चाहिए, इति उपदेश सारम, ये सार है अंततः। सो इसको अगले श्लोक में कहते हैं तद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य कोन कुरिया कथारतिम, अगले श्लोक में कहते हैं हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को, संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तद अनुध्य असीना, तद अनुध्य, भगवान के स्मरण, क्या क्या होगा भगवान के स्मरण करने से? भगवान का स्मरण की तुलना जो है एक तलवार से की गई है। असीना, असीना मतलब तलवार। तद अनुध्य असीना युक्ता, जिस व्यक्ति के हाथ में भगवान के स्मरण शक्ति का तलवार है, कर्म ग्रंथि निबद्धति, निबंधनम, हम सब कर्म के ग्रंथि में बंध गए। ग्रंथि, ग्रंथि मतलब क्या? गांठ, गांठ बांध दिया। कहां गांठ बांधा? क्या गांठ है? कुछ तो नहीं, सब ठीक ठाक है हमारा। कोई बीमारी होता है तो गांठ है, इधर गांठ है बोलते हैं, और कोई गांठ नहीं है, सब ठीक ठाक है। नहीं, जब आध्यात्मिक संसार से जीव का पतन होता है, भोग करने की इच्छा, भगवान बनने की इच्छा आता है, तो जीव, शुद्ध आत्मा जब भौतिक तत्व के संपर्क में आती है, तो हृदय में एक गांठ बन जाता है, कर्म ग्रंथि, गांठ बन गया। और ये ऐसा ब्रह्म गांठ है, खुलता नहीं, वो ऐसा खुलेगा नहीं, ऐसे बस खोल दिया नहीं। और ये जो गांठ है नहीं खुलता, इसीलिए ये वजन जो है हमें चौड़ा, पूरे 84 लाख योनि में घुमाता रहता है। कर्म, यस्विंद्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधान रूप फलभागन, इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक हरेक व्यक्ति इस कर्म बंधन में फंस गया है। तो ये बंधन है, एक्चुअली हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा छोड़ के भ्रमण क्यों नहीं कर सकता? पूरा भ्रमण करके वापस शरीर में आ सकता? नहीं आ सकता, बांध दिया उसको पकड़ के। जैसे पुराने जमाने में कैदियों को जेल नहीं था उस समय, तो क्या करते थे, एक इतना बड़ा लोहे का गोले लेते थे, एक गोला, उसमें से चेन निकाल के पैर में बांध देते थे, बस। तगड़ा आदमी है तो भाग सकता है 60 किलोमीटर स्पीड, पर इतना बड़ा लोहे का गोला को कहां उठा के भागेगा? उठा भी नहीं सकता वो, 15 लोग तो चाहिए उसको उठाने के लिए, कहां भागेगा? इस तरह से आत्मा जो है सच्चिदानंद है, कहां भी भ्रमण कर सकता है। नारद मुनि सिर्फ सोचते हैं, वैकुंठ जाके आते हैं, जैसा हम लोग बगल घर जाके आते हैं, ऐसे वैकुंठ जाके आते हैं नारद मुनि, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है। उनका शरीर जो है भौतिक सामग्रियों का नहीं बना हुआ है, जहां चाहे जब चाहे वो जाते हैं। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका नाम, जब चाहे मुझे उधर जाना है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टिकट खरीदने का रिजर्वेशन आ रहे से कुछ नहीं, जहां सोचा वहां, एक ग्रह से दूसरा ग्रह, एक धाम से दूसरे धाम, यहां तक कि भौतिक संसार से वैकुंठ लोग भी जाके सबका दर्शन करके वापस 3 घंटे के अंदर वापस भी आ गए, भगवान की सेवा के लिए। आपको वापस भी तभी मानिएगा, इतने मुक्त आत्मा है, पर हम गांठ के साथ बांध के शरीर के अंदर डाल दिया गया, ये हमारा जेल है। एक्चुअली हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कितना सुंदर शरीर है मेरा, और उसको बना के फर्स्ट क्लास आईने के सामने खड़े होकर उसको बनाते हैं हम लोग, एक्चुअली ये जेल है, ये जेल है एक्चुअली, पर इसके ऊपर हमारा गर्व है। हमारा सफेद रंग का जेल है, तुम्हारा काला हमारा बहुत तगड़ा जेल है, और तुम्हारा सब सूखा सूखा जेल, अरे सब जेल नहीं है, और इतना हमको वो अहंकार है उसके ऊपर, हमारा अमेरिकन जेल है, तुम्हारा तो भारतीय जेल है, हमारा मनुष्य का जेल है, तुम्हारा चूहे का जेल है। पर हरेक व्यक्ति जो है ये जेल में बंध गया है, आत्मा, मुक्त आत्मा को जेल के अंदर डाल के बांध दिया गया, कर्म ग्रंथि, और लाचार होकर जो भी कर्म करे और भी बंधन में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, खींच खींचे वो जहां जाता है हम भी वहां जाते हैं बस। और ये गांठ जो है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश जो है मन से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि से जुड़ा हुआ है, बुद्धि अहंकार से जुड़ा हुआ है, अहंकार आत्मा से जुड़ा हुआ है, इस तरह से पूरा चेन, बांध बांध के सब कनेक्शन जुड़ गया। तो शरीर जहां जाएगा वहां आत्मा भी जाएगा, और आत्मा जहां जाने की इच्छा करेगी शरीर भी आ जाएगा, साथ साथ में तो जो भी खींचोगे दोनों साइड में जाता आता है। तो बंद रहे हम लोग, और कौन सा ग्रंथी है? अहंकार, मूढ़ आत्मा करता हम के मन। ये अहंकार जो है ऐसा गांठ नहीं है कि उसमें देख के थोड़ा ऐसा निकाल दे, नहीं, इसको इसको भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तस्मा छिन्न असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। शस्त्र एक ऐसा तलवार चाहिए, तलवार से काटो गांठ, खोलते मत बैठो, खुलेगा नहीं ये गांठ, इसको पकड़ के एक फाक, बस एक मार दो टुकड़ा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, दृढ़ता पूर्वक इस तलवार को हाथ में लेके काटना ही पड़ेगा। और कौन सा तलवार है ये? यद अनुध्य असिना युक्ता, भगवान की स्मरण, भगवान का स्मरण जो है, भगवान का हमेशा स्मरण करना, स्मर्तव्य सर्वं विष्णु, वो स्मरण जो है ऐसा तलवार है जो आत्मा और शरीर को जो गांठ बांध के है अहंकार, उसको काट सकता है। इसीलिए भगवान कहते अहंकार को काटना है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन व्यक्ति भगवान का हमेशा कीर्तन कर सकता है, स्मरण कर सकता है, जो सबसे पहले अहंकार को त्याग दिया है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन, वो व्यक्ति जानता है कि मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं डूब रहा हूं इस भौतिक संसार में, और भगवान की कृपा से इस रस्सी का आश्रय मिला है हरिनाम का, इसको पकड़ के रखो बस। वो हमेशा भगवान का जो जो समझता है कि मैं बहुत बुरी स्थिति में हूं, वही इस रस्सी को पकड़ेगा, जिसको लगेगा अहंकार मैं पार कर जाऊंगा, मेरे को कोई रस्सी का जरूरत नहीं, मैं खुद तैराक हूं, फर्स्ट क्लास पार कर जाऊंगा। यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन, वही कर्म ग्रंथि को काटना है तो भगवान का स्मरण होनी चाहिए बस। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, श्रोत छिंदन्ति कोविदस्तस्य, कोविद मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, कम बुद्धि वाले लोग उल्टा सीधा कोई कोशिश करते रहते हैं अलग अलग प्रकार के, नहीं उसमें पर फंसो, शास्त्र के आधार पर ही कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना कांड में सब फंस जाते हैं, उसमें मत फंसो, इसका सार यही है। छिंदन्ति कोविदस्तस्य कौन कुर्याद यथारति, बुद्धिमान व्यक्ति वो है ऐसे चीजों को छोड़कर और किस चीज का आश्रय लेने जा रहे हो? तो कौन कुर्याद कथा रति, अच्छा अभी स्मरण करना है, 24 घंटे स्मरण करना है, मन मना भव मत भक्तो मत व्याजी मान नमस्कार, अगर करना है कथा रति, अरे थोड़ी रति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिस व्यक्ति, अगर आप एक किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो 24 घंटे उसके बारे में सोचेंगे, बिना प्रेम के सोचोगे तो क्यों सोचेंगे? जिसके प्रति हमारा बहुत प्रेम है उसके बारे में सुनेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो मेन चीज है, अगर 24 घंटे हमको करना है श्रोतव्य कीर्तव्य ध्येय पूज्य कौन कुर्यात कथा रति, अगर स्मरण करना है तो तीव्र प्रेम होनी चाहिए भगवान के प्रति। जब प्रेम होगा तो ये तपस्या नहीं है, अभी हमारे लिए तपस्या है, 16 माला करना भी बहुत बड़ी तपस्या है, डेढ़ घंटा नाम स्मरण करना, और उस समय भी हमारा प्लानिंग चलता रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, हरे कृष्ण वो भी करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, जबरदस्ती क्या बोला गुरु महाराज ने बोल दिया करना है, पर उतना प्रेम नहीं है। पर अगर प्रेम होना है कथा रति, तो रति कैसा प्राप्त किया जाए, प्रेम कैसा प्राप्त किया जाए? तो अगला श्लोक कहते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ सेवना। अगर रति वासुदेव कथा रुचि प्राप्त करनी है तो ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए जिसके हृदय में वो रति है, क्योंकि जिस व्यक्ति का हमेशा आप सुनते हैं कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, उस व्यक्ति का लक्षण आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। जिस व्यक्ति की आप सेवा करेंगे उस व्यक्ति का लक्षण जो है, गुण जो है, उसकी जो हृदय की जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो निश्चित रूप से हमको छू जाएगा, उनकी कृपा भी मिलेगी। तो शुश्रूषो, श्रवण करना, कैसे? श्रद्धानुस्य, श्रद्धा पूर्वक। मेन चीज है श्रद्धा होनी चाहिए। अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो संशय करता हमेशा, पता नहीं बोलते गए प्रभु जी, बोलते तो है भागवतम, पर ये भागवतम किसने लिखा? प्रभुपाद जी ने बोला जशी आए तशी, पर पता नहीं उनसे पहले किसी ने थोड़ा घुमा फिरा दिया होगा तो। चैतन्य महाप्रभु बोले उससे पहले कौन लिखा होगा, घुमा फिरा दिया होगा तो। तो अज्ञश्च, जो मूर्ख है, ज्ञान नहीं है, और जिसको प्राप्त हुआ पर अश्रद्धानस्य, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा पूर्वक सुन भी लिया, भगवत गीता का श्लोक भी बोलता है, पर संशयात्मा, सचमुच में है क्या ऐसा, बाई चांस भगवान है ही नहीं तो। गीता तो मैंने पढ़ा किया है, ऊपर से नीचे साइड से साइड सब बोलता हूं मैं, पर बाई चांस नहीं है तो। संशयात्मा विनश्यति, न वो इस लोक में सुख रहेगा ना वो परलोक, परलोक दूर की बात, इस लोक में भी सुखी नहीं होगा निश्चित रूप से। संशय है, आप घर में जाते हैं और आपकी पत्नी आपको घर में फर्स्ट क्लास प्लेट बना के खाना खिलाती है और आपको विश्वास नहीं है, इसमें अगर कुछ डाल दे तो फूड पॉइजनिंग। आप होटल में जाते हैं तो हमेशा चिंतित रहते हैं, पता नहीं खाना कैसे बनाया, ठीक बनाया कि नहीं, उसमें क्या डाला है। अगर आप शत्रु के कैंप में चले जाए उस समय तो सब सोचना पड़ेगा, कुर्सी में बैठने के पहले नीचे बॉम्ब रखा होगा तो, माइक में बोलने से पहले इसके अंदर कोई बॉम्ब रखा होगा तो, खाने से पहले इसके अंदर कुछ जहर डाल दिया होगा। तो जब शंका करने लगता है आदमी, वो बहुत ही तकलीफ होता है उसको, हर क्षण हमेशा सोचता रहता है बच्चन सिंह को छत गिर गया तो, पंखा नीचे गिर गया तो, अभी मेरा अगर मैं छुआ तो करंट लग गया तो, शॉर्ट कट होगा। अरे उसको अगर विश्वास नहीं है किसी चीज में, करंट इसमें नहीं है, लोगों में विश्वास नहीं है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग में विश्वास नहीं है, तो उसका जीवन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हमेशा अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो सुखी नहीं रह सकता। तो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं योग क्षेम वहां में, हम चिंता मत करो। मैं तो शुश्रूष हो, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अरे इतना सब हो रहा है कि उसे व्यक्ति हमारे लिए बचाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। वासुदेव कथा रुचि, श्रद्धा पूर्वक जब श्रवण करेंगे तो वासुदेव कथा रुचि कैसे होगी? स्यान महत सेवया, महत सेवया। और महात्मा कौन है? महात्मा अनुसमान पार दैवीं प्रतिमाशिता, भगवान की अंतरंग शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, यानी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भजंती अनन्य मनसो, जिनको विश्वास है भगवान जो है ज्ञातवा भूतादि हो गए हैं, ऐसे महात्माओं के सेवा जब करेंगे तो। और ये महात्मा खास भगवान के भेजे हुए व्यक्ति हैं, जो असुर लोग हैं। भगवान कहते हैं गीता में, आसुरम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि तान हम दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपान असंग अशुभान। आसुरम योनि जन्मषु, असुर योनि में डाल देते हैं लोगों को भगवान, जब उनका व्यवहार शास्त्र के विरुद्ध होता है। पर ऐसे लोगों का उद्धार कौन करेगा? अरे भगवान जिसको मार दे उसका उद्धार कौन करेगा? तो भगवान खुद अपने सेवक, अपने पार्षद, अपने पुत्र को भेजते हैं कि उद्धार करो इन लोगों का। तो पतित लोगों का, किराट हूं आंध्र पुलिंद पुलकशा आभिर शुंभ यवन खसा, ऐसे ऐसे जिस जिस जाति लोगों का भी उद्धार कर देते भगवान के भक्त। द्रौपदी जी के जीवन में देखते हैं कहां कहां जाकर कैसे कैसे लोग आज ब्राह्मण नहीं संन्यास बन के पूरे तथाकथित ब्राह्मणों का उद्धार कर रहे जो पैदा हुए बहुत नीच जाति में। ये शक्ति है भगवान के शुद्ध भक्तों की। पुण्य तीर्थ निषेवना, तीर्थ पाद उनको कहते हैं, तीर्थ पाद। तीर्थ पाद मतलब उनके चरण कहां कमल जहां भी पड़े वो जगह तीर्थ स्थान है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर को, भगवद्गीता भागवता तीर्थ भूतम स्वयं निभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्ते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने हृदय में भगवान को लेकर घूमते हो, तो जहां भी भगवान को लेकर घूमते हो वो जगह मंदिर है, उनका शरीर जो है मंदिर है। हमारे शरीर में भी भगवान है पर हम उनको देखते नहीं, सब बाहर ही बाहर देखने में इतने बिजी हैं, अंदर देखे नहीं कभी। पर ये जो है हमेशा ये उनका हेमांजन छुत भक्ति विलोचय ना संत सदैव हृदय विलोचय, हमेशा भगवान अपने हृदय में दर्शन करते रहते हो, उनको लेके चलते हैं। तो जहां वो चरण कमल रखते हैं वो जगह तीर्थ स्थान है, तीर्थों को तीर्थ स्थानों को भी तीर्थ शुद्ध कर देते हैं वो, ऐसी शक्ति उनके अंदर है। तो ऐसे लोगों की सेवा जब हम करते हैं तब उनके हृदय की जो स्थिति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत हमारे हृदय में प्रवेश करती है, उनके लक्षण हमने आ जाता है। तो पुण्य तीर्थ निषेवना, ऐसे लोगों का सेवा करना बहुत जरूरी है। लोगों का संग लेना, और संग मतलब उनके संग में आकर सुनना, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा सबको नहीं मिल पाएगा, कितने कितने लोग उनके शरीर की सेवा कर सकते हैं, बहुत कम, और वो भी शरीर भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। पर वाणी सेवा जो है उनकी वाणियों को सुनना, वाणी को सुनना और उसके ऊपर अपने जीवन को अमल करना लगाना। तो कहते हैं अगले श्लोक कहता है कि कैसा है वो रियल सेवा, मतलब क्या? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विधुनोति सहृत्सताम। श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा इत्यादि भगवान से अभिन्न है, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमित्त स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि न अनुराग। अरे इतना कृपा किया है, आपका नाम दे दिया है, उसके अंदर सारी शक्ति डाल दी है और कोई नियम नहीं रखा है, कभी भी कोई भी किसी अवस्था में किसी जगह में जप कर सकता है, पर दुर्दैवम इतने कृपा करने के बाद भी, आहेतु की कृपा करने के बाद भी न अनुराग, मुझे वो कृपा प्राप्त करने में उत्सुकता नहीं, इच्छा नहीं। तो श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, उनका श्रवण और कीर्तन जो है सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, सबसे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य दूसरा नहीं है। बहुत सारे पुण्य इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे इतना दान देंगे ये करेंगे, वो कोई नहीं। पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान के प्रतिनिधियों से, शुद्ध प्रतिनिधियों से श्रवण और कीर्तन करना भगवान के बारे में, उससे बढ़कर पुण्य कार्य कोई नहीं है। क्योंकि पुण्य का मतलब क्या है, क्यों करता है आदमी पुण्य? ऑफकोर्स जो भौतिकवादी है वो पुण्य इसलिए करता है ताकि धन संपत्ति प्राप्त मिले, सुख मिल जाए हमको इस संसार में, पर सच्ची में पुण्य का मतलब यह है हृदय को शुद्ध करे। जीवन का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। तो ये जब श्रवण करते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, अभद्र सारे अभद्र, और सबसे बड़ा अभद्र क्या है? बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी धर्म के प्रति, स्त्री के प्रति, स्त्री मतलब मेरा अपोजिट सेक्स, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और भौतिक कोई क्या बोलते हैं मान इत्यादि, इसके भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा सूक्ष्म रूप से इन चीज के प्रति उनका पतन हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका हमने देखा शास्त्रों में वर्णन, और उसको पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बाधा है। फिर भी अगर हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोती, धुनो मतलब धुल जाना, भगवान धो डालेंगे आप चिंता मत करो, अगर सुनते रहेंगे तो भगवान जो है कथा के द्वारा हृदय में प्रवेश करके आपके सारा धो डाल देंगे, अंदर से साफ कर देंगे। विधो होती सहृत सकाम, क्योंकि परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हुए भगवान और वो देख रहे हैं, इसको सुनने की कितनी इच्छा है, कितनी उत्सुकता है, कितनी आतुरता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यः, जितनी आतुरता है, जितनी इच्छा है, जितनी उत्सुकता है, उतना भगवान प्रकट होंगे उस कथा के द्वारा डायरेक्टली। पर हमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वह कौन है क्या बोलेगा मालूम है, उस हद तक हम वहां कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, कृष्ण के संपर्क में नहीं आएंगे। परमं पवित्रम, और कृष्ण के संपर्क में नहीं आएंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा। विधून होती सदत सताम, कैसे होगा? और इसीलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भावत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हमारे अंदर भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है। निष्ठा मतलब क्या? किसी अवस्था में भ्रमित नहीं होना। हमारा जो भगवान के प्रति श्रवणम कीर्तनम ध्यान और पूजनम, ये रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी फर्स्ट क्लास होता है, कभी कभी ढीला पड़ जाता है, कभी ऐसा है कभी ऐसा। क्यों ऐसा होता है? अभद्रेशी, बहुत सारे अभद्र है, अनर्थ है। अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा, जब तक अनर्थ रहेगा तब तक निष्ठा नहीं आएगी, स्थिति नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा डगमगाते रहेंगे हम। और वो कैसा आएगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवय। नित्यं भागवत सेवय का मतलब है दो प्रकार के भागवत, एक है पुस्तक भागवत, एक है व्यक्ति भागवत। तो पुस्तक भागवत जो है भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का आदान प्रदान जो है उसके बारे में वर्णन करता है, और व्यक्ति भागवत जो है जिसने अपने पूरे जीवन पुस्तक भागवत के आधार के ऊपर अपना मन, अपनी वाणी, अपने कर्म को चलाया है, ऐसा व्यक्ति पुस्तक भागवत है, व्यक्ति भागवत। नित्यं भागवत सेवया, ऐसा अगर ऐसे भागवत की सेवा करेंगे, पुस्तक भागवत की सुन के ध्यान पूर्वक, और व्यक्ति भागवत की जब भी मौका मिले उत्साह पूर्वक तीव्रता से आतुरता से, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती निष्ठ की, अभद्र निकल जाएगी, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, निष्ठा आ जाएगा। निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, प्रादुर्भावे द्रवे क्रम क्रमशः क्रमशः धीरे 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 अपने आप लाइन बाय लाइन हो जाएगा। सतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्करण रसायन कथा तज्जोशनाद आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अधुक्रमिष्यति। सतान प्रसंगान, भक्तों में संग में आकर मम वीर संविदो, मेरी जो सुंदर गाथाएं हैं, मैंने जो सुंदर लीलाएं की है भगवान ने, उनका श्रवण करेंगे। मम वीर भवंति हृत्करण, हृदय और कर्ण में रसायन, कृष्ण रसायन, ये रसायन ऐसा नहीं यहां से पीते 31 दिसंबर को सब लोग अपना रसायन का पान करेंगे, पर 31 के रात को नए साल के लिए हम लोग यहां से रसायन पीना चाहिए, हरित कर्ण, और यहां से पिएंगे तो सीधा पेट में नहीं जाएगा, यहां से पिएंगे तो पेट में जाएगा, पर यहां से पिएंगे तो सीधा हृदय हृदय में जाएगा। हरित कर्ण रसायन कथा तज्जोशना आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग की ओर हम बढ़ेंगे, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति फटाफट। नारद मुनि ने इसके शुरुआत में, इसके बाद, ये सारे प्रश्न उत्तर के बाद नारद मुनि खुद अपना उदाहरण देते हैं व्यासदेव को। व्यासदेव, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि भगवा भागवत की सेवा करने से, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से तुम इसी जीवन में भगवत धाम नहीं जा सकते, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम ऐसे ग्रंथों की रचना नहीं करोगे, तो मेरे बारे में सुनो, मैं अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र था, कोई योग्यता नहीं था, ऊंचा जन्म नहीं था, बुद्धि नहीं था, सुंदर शारीरिक सुंदरता नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं तो एक दासी का पुत्र था, और मेरी माँ जो है वो सेवा करती थी भक्तों की। तो एक बार सौभाग्यवश ये बड़े बड़े भक्ति वेदांत महात्मा लोग यहां आए जहां मेरी माँ सेवा करती थी, और मैं तो 5 साल का लड़का था, मुझे कुछ नहीं मालूम। जहां माँ जाती थी वो साड़ी पकड़ के मैं भी पीछे पीछे जाता था बस, और वो जो करती थी मैं भी वही करता था। तो उन्होंने महात्माओं का सेवा कर वो कर रही थी और उनके मैं भी कर रहा था बस। पर मैं कैसा करता था, जब वो लोग उठवा लोग बैठ के चर्चा करते थे भगवान के बारे में तो मैं सब सुनता था बस। मैं ऐसा मतलब ज्यादा खेल कूद नहीं था, गंभीरता से चुपचाप ज्यादा उछल कूद नहीं करता था, चुपचाप बैठ के सुनता था बस। एक बार उनकी अनुमति लेकर मैंने उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया। उच्चिष्ट स्वीकार करने का मतलब क्या, कोई खा रहा है मुंह उधर उसको उधर देखो बोलो इधर से खा लेना, ये उच्चिष्ट लेना नहीं। ठीक है लेंगे तो भी ठीक है, और उसको बेचारा उसको तकलीफ देके उधर मतलब वो खाया भी नहीं, उसका पूरा गेट उठा के कोई ले जाएगा, वो खुद भूखा है और आप उसका उच्चिष्ट खा रहे हो। कभी कभी हमारे संस्था में ऐसा होता है, उसके चरणों के धूल लेने के चक्कर में उसका चरण फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, एक्चुअली उच्चिष्ट लेने का मतलब क्या, जैसा बोलते प्रसाद, प्रसाद खाना असुर असुर स्वभाव के लोग प्रसाद नहीं खाएंगे, कोई प्रसाद है नहीं चाहिए। प्रसाद का मतलब जूठा, अरे किसी का जूठा खाना मतलब तुम उसके सेवक हो, पहले मालिक खाएगा उसके बाद जो बचेगा नौकर खाएगा। तो किसी का जूठा खाना प्रसाद खाना मतलब हमने वचन ले लिया है मालिक खाने के बाद ही हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमने वचन ले लिया हम भोग नहीं खाएंगे, हम प्रसाद खाएंगे बस। तो उच्चिष्ट, और किसी के भक्त का उच्चिष्ट खाना मतलब और भी नीच स्थान। और भक्त को बोल गए ला तेरा उच्चिष्ट, ये नहीं, असली भावना ये है। एक्चुअली उसका लेने का मतलब ये है कि हम आपके दास हैं बस, आपके जो छोटे मोटे बचे खोचे चीज है वो हम खाएंगे, आप जो कह रहे हैं उसका एक दो शब्द अगर हमारे कान में गया और उसको हमने स्वीकार किया अपने जीवन में तब हमने उसको उच्चिष्ट है। अंततः वो नम्र भाव, अपने आप को नम्रता पूर्वक भक्तों के सामने प्रस्तुत करना दासा दास भाव से। तो नारद मुनि ने 4 महीनों के लिए उनको सेवा करने का मौका मिला, सेवा किया और एक बार उनके अनुमति लेकर उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया। उसके बाद 4 महीने के बाद चल पड़े और भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा समझ नहीं सकते, उनकी मां को सांप काट लिया एक दिन, वो मर गई, 5 साल का लड़का अकेला। और उस समय जब कोई आश्रय नहीं रहा उसे तब उसने स्मरण किया, क्या बोले थे, ये आश्रय लेना मतलब है, उस शब्दों का उसने आश्रय लिया। चतुर्मास के दौरान मैं क्या सुना था, अरे वो महात्मा ने कहा था कि भगवान ही सबके आश्रय हैं, भगवान में विश्वास करो, एकदम निर्भय होकर अकेले 5 साल का लड़का चल पड़ा हो, कोई गांव से कोई शहर से कोई जंगल से कोई खेत से कोई सब जगह से घूमते घूमते अकेला पूर्ण रूप से विश्वास करते भगवान है निर्भर करेंगे बस, राके कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राके के। और उसी जीवन में उसने अपने जीवन को उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण की और जैसे मृत्यु हो गई अगले जन्म में नारद मुनि बन गए। एक ही जीवन में दासी के पुत्र से लेकर नारद मुनि, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कहां नारद मुनि कहां दासी पुत्र, पर एक जीवन में हो गया। तो व्यासदेव को नारद मुनि बता रहे हैं अब तुमने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, छोड़ो ये सब ग्रंथ, अभी एक शुद्ध ग्रंथ लिखो बस, जिसमें भगवान का श्रवणम कीर्तनम ध्येयम पूजनम, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से। और ऐसे व्यक्ति परंपरागत अगर हम श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक तो वही को प्राप्त होगी, क्योंकि कलयुग में कलौ शूद्र संभव, सबके सब शूद्र है, कोई ब्राह्मण है ही नहीं। हो सकता है शूद्रों में से जो थोड़ा अच्छा है उसको ब्राह्मण शूद्र बस, पर ब्राह्मण के लक्षण क्या है, क्षमा दमा तप शौचम शांति ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, कौन सा है ऐसा लक्षण वाला। पर अहेतु की कृपा कलयुग का लक्षण देखकर ये ग्रंथों की रचना की गई है, और जहां सारा ग्रंथों का सार जो है निचोड़ के दे दिया गया, बस इतना करो वही काफी है। और जब भगवत भक्ति देष्टि की, अब क्या होगी जब बार बार ऐसे भक्तों के द्वारा कथा सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे, नष्ट तदा रजस्तमो भाव कामलो भाव यशे चेत एत अनावितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। रजोगुण और तमोगुण चला जाएगा और सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। रजो और तमोगुण जो है काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो छह प्रकार के शत्रु हैं, जो मित्र के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है और हमको हमारे परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, इसीलिए हमारे शत्रु है। वो शत्रु वो है जो हमारे असली मित्र से दूर ले जाए हमको लालच दिखाकर कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। काम क्रोध लोभ मोह जो है हमें दूर ले जा रहे हैं, गाजर ओ भव इंद्र विषय भोग का गाजर दिखाकर हमको दूर ले जा रहे हैं अपने सुहृदम सर्वभूताना भगवान श्री कृष्ण से, उनसे दूर ले जा रहे, इसलिए हमारे शत्रु है। और सारे शत्रु जो है रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। तो जब तक रजोगुण और तमोगुण हमारे हृदय में रहेगा और उसका स्वभाव प्रभाव रहेगा, तब तक भगवान की भक्ति में स्थित होना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा रजोगुण बढ़ गया, चले गए थोड़े समय के लिए, फिर से वापस आए, फिर थोड़ा किया, फिर चले गए। तो स्थितम सत्वे प्रसीदति, जब सत्वगुण में आ जाएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, शोक करना मतलब तमोगुण शूद्र हमेशा शोक करता रहता है, और कांक्षती आकांक्षा करना मतलब रजोगुण। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो हमेशा सत्वगुण में रहे, अफकोर्स शुद्ध सत्व मतलब बहुत ऊंची बात है, कम से कम सत्वगुण में तो आओ पहले। स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, ऐसे प्रसन्न मनस से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, स्थित करते हैं, भगवत तत्व विज्ञानम यो मां वेति तत्वतः, तत्व विज्ञानम जान जाते हैं भगवान को, तत्व पर जान जाते हैं कि भगवान हमारे मालिक है, हम उनके नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, तब मुक्त संगस्य जायते, इस भौतिक संसार की जो शरीर के बंधन जो है उसे मुक्त संगस्य जायते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस, उसे मुक्त हो जाते हैं अपने आप, और तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। भगवान को जब अपने हृदय में हम उनका दर्शन करते हैं, देवांजन चुत भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेश विलोकयन, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमने बताया ना ग्रंथि, हम क्यों बंधे हुए इस संसार में, क्योंकि अहंकार जो है वो आत्मा को और शरीर को जोड़ के गांठ बांध दिया है, और वो गांठ को हम खींच खींच के भाग रहे हैं पर पकड़ के रखा है हमको। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब श्रद्धा पूर्वक भक्तों से और भागवत से श्रवण करते रहेंगे, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमें विश्वास हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इसका सबूत क्या है, शरीर शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान जिसमें भी गुजरे हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मानेंगे शरीर मतलब सुख और दुख, शरीर मतलब शीत और उष्ण, अहंकार मतलब मान और अपमान, ये होता ही रहेगा, पर इसके कारण हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकते। आज कोई अपमान करेगा, कल अपमान करेगा, आज दुख है कल सुख है, आज शीत है कल उष्ण है, पर भगवान की भक्ति हमारा चलते रहेगा। विद्य के हृदय ग्रंथि, वो मुक्तात्मा है, इहा यस्य हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलेश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सो उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं कौन मुक्तात्मा है, ऐसा नहीं मुक्तात्मा मतलब एक ऐसा ट्यूबलाइट जैसा उसके साथ चर के चारों ओर ऐसा प्रकाश आएगा और उसके चार हाथ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्तात्मा का लक्षण क्या है, इहा इस भौतिक संसार में रहते हुए यस्य हरिदासे हरि के दासों तुम्हें कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा मनसा वाचा मन से वाणी से और शरीर से निखिलश्वपि अवस्थासु हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है जीवन मुक्त समुच्चय, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। सबसे बड़ा संशय क्या है, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? सबसे बड़ा संशय यही है पहले पहले, फिर कुछ लोगों को समझ में आ गया मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, फिर आत्मा में भी मैं हूं भगवान भी मैं हूं, अभी तो मुक्त आत्मा हूं मैं तो भगवान में लीन हो जाऊंगा। आत्मा के प्रति संशय है, परमात्मा के प्रति संशय है, और परमात्मा और आत्मा के जो रिश्ता है उसके प्रति संशय है। ये संशय के कारण तो इस संसार में अटके हुए हम लोग, पर जब भगवान के बारे में जानेंगे, स्वयं के बारे में जानेंगे और अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तब छिद्यन्ते सर्व संशय, कोई संशय नहीं। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, अर्जुन ने गीता सुनने के बाद कहा अब कोई संदेह नहीं है, आप मालिक हो मैं आपका दास हूं, करिष्ये वचनं तव। तो छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, कर्माणि निर्दहति किंचित् भक्ति भाजं। अकर्म करने के कारण अच्छे कर्म या बुरे कर्म उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और इस तरह से अंत में इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा दूसरा प्रश्न यह था कि बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं, उसको पढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा, इसीलिए हमें सार बताइए जिसके पालन करने से हम ये आत्मा सुप्रसिद्धि आत्मा तृप्त हो। तो ये सब बताने के बाद अब उसके निष्कर्ष में कहते हैं, अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वंती आत्म प्रसादनी। अतएव निश्चय ही सारे योगी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। इस तरह से सुत गोस्वामी ने बड़े कृपा पूर्वक इन दूसरे प्रश्न का बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्त पर विस्तृत रूप से पर संक्षिप्त में सार में 8 श्लोक में सारे शास्त्रों का निचोड़ निकालकर सिर्फ 8 श्लोक में बता दिया, बस 7-8 श्लोक कि अगर आत्मा को तृप्त करना है, विषय इंद्र तृप्ति जो है वो इंद्रियों को तृप्त करती है, आज खाया जीवा से कल पेट भर गया फिर से कल जीवा लालसा होगी, मन को थोड़ा आज तृप्त किया कल फिर से मन विचलित हो जाएगा, बुद्धि और नए नए चीज को इच्छा करेगा, पर आत्मा तृप्त जब हो गया, आत्मा तृप्त हुआ उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि पूरे ब्रह्मांड में पूरे सृष्टि भौतिक सृष्टि में कोई भी चीज, भगवान कहते हैं ये भक्ति को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, इंद्र की पदवी दूंगा, ब्रह्मा जी की पदवी दूंगा, मैं पारमेश्यम, मेरे को पारमेश्वर वो भी नहीं चाहिए, भगवान ब्रह्मा जी की पदवी भी नहीं चाहिए, कीट जन्म हाओ यथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं मुरा, कीड़े का जन्म मुझे मंजूर है, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मम जन्म नहीं जन्म नहीं ईश्वर है, कीड़ा बना के रखो चलेगा, और आपकी भक्ति से मेरे को मत निकालना, और आपके विमुख होकर ब्रह्मा जी की पदवी भी नहीं चाहिए मुझे, ब्रह्मा जी का धन दौलत और ऐश्वर्य और इतना बड़ी आयु कुछ नहीं चाहिए, नरक ही है मेरे लिए, तो नरक में भी डालो, आपकी अगर सेवा हो तो वो नरक नरक नहीं है, वो बिल्कुल धाम है मेरे लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कोलावेच श्रीधर को बोला, कोलावेच श्रीधर क्या स्थिति है, फटे कपड़े, खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ हड्डी और चमड़ा था बस उसके, हड्डी और क्या बोलते हैं हाँ चमड़ी बस, किन मांस मांस को खाने इतना, और वो उसने भी वो कमाता था, पहले तो इतना प्रामाणिक था कि कुछ कमाता ही नहीं था, और उसमें जो कमाता था उसमें आधा गंगा की पूजा करता था भगवान की चरण कमल से निकली उनकी दासी समझ कर, और बाकी कुछ बाई चांस बचा तो उसमें जो मिलता था खाता था, तो लोग उसको चिढ़ाते थे, बोले हो गया ना कृष्ण की भक्ति करके हो गया तुम्हारा। और जब चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाए अपना दर्शन दिए, उसको बोले क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें अष्ट सिद्धि चाहिए, 9 प्रकार की निधि चाहिए, तुम्हें ब्रह्मा जी की पदवी चाहिए, इंद्र की पदवी चाहिए, तुम्हें गोलोक धाम में प्रवेश चाहिए क्या? बोले वो भी नहीं चाहिए, बोले तुम्हें क्या चाहिए फिर? बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुमने इतना सेवा किया, कुछ तो मांगो। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए बस।
नहीं नहीं भैया मांगो प्लीज,
कुछ तो मांगो। अरे तुमने इतना सेवा किया, कुछ तो उसकी आदान प्रदान करना, प्रेम मतलब आदान प्रदान, इतना तुमने किया कुछ तो दो ले लो ये लो।
बोले ठीक है,
आप मांग रहे हो, आपको प्रसन्न, आपको तृप्त नहीं होंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो आप अप्रसन्न हो जाएंगे। आपको तृप्त करने में पूछ रहा हूं, आप मैं ऐसे ही रहूं कोला बेच श्रीधर, फटा घर फटा छत जो है वैसे ही मेरा छेद हो, कोई चिंता नहीं। सिर्फ आप हर रोज आते रहना, मेरे को सताते रहना, बिना पैसे के सारा मेरा सामग्री छीन के चले जाना,
चलेगा? बस ऐसा ही दर्शन देते रहना आप मुझे, और वो सेवा में मुझे लगाना बस, और कुछ नहीं चाहिए।
विरोध धाम भी नहीं चाहिए
अगर आपकी सेवा नहीं होगी।
हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, ये चैतन्य लीला हमारी है बस, डायरेक्टली इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। पर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त के हृदय का जो ऐश्वर्य है उसका प्रदर्शन किया, सात प्रहवे लीला। क्योंकि भक्त के हृदय में क्या खजाना है किसको भी नहीं मालूम, वो कितना आनंद लूट रहा है किसी को नहीं मालूम। लोग सोचते देखो बेचारा फटा धोती फटा कुर्ता बेचारा, और वो सोच रहा है बेचारे लोग। दोनों एक दूसरे को बेचारा कहते हैं, जो महल में है वो देख रहा है, देख बेचारा भाई भीख मांगते घूम रहा है, और वो कहता है बेचारे लोग इनको भगवान कृपा करो, और वो लोग कहते हैं इनको कुछ तो कृपा करो भगवान, आपका नाम लेते रहते 24 घंटा, कुछ तो खिलाओ उसको, ऐसा हो गया बेचारा। इसी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कोला बेचा ओ श्रीधर ठहरो ठहरो, तुम इतने धन संपत्ति तुम्हारे पास है, बाहर से भीख मंगा जैसे लग रहे हो, एक दिन तुम्हारा खजाना सबको मैं दिखा दूंगा। बोले कुछ नहीं, जाके देख लो हमारे झोपड़ी में कुछ नहीं है मेरे पास। बोले नहीं नहीं तुम छिपा के रखे हो, दुनिया को तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, तुम्हारे पास इतना खजाना है। क्योंकि खजाना का मतलब क्या, धन का मतलब क्या, धन पेपर से नहीं बनता, उसकी खरीदी की शक्ति कितनी है। क्यों सोना को हम इतना मूल्य देते हैं, क्योंकि सोना इतना देगा तो इतना चीज मिलेगा मार्केट से। तो धन वो है जिसमें खरीदने की शक्ति है, वो संपत्ति है, और वो धन जो भगवान को ही खरीद ले सबसे बड़ा धन है। आप करोड़ों रुपया दो भगवान नहीं मिलेंगे, आप कुछ भी दे दो भगवान नहीं मिलेंगे, पर भक्ति ऐसी शक्ति है, भक्ति देंगे तो भगवान मिल जाएंगे सोल्ड आउट। तो जो भगवान सब कुछ तो भगवान का ही है, हम बोलेंगे ये सब नहीं चाहिए भगवान ही हमको चाहिए। जमींदार बोलेगा क्या क्या चाहिए तुमको, घर चाहिए ये चाहिए, बोले तुम चाहिए। अगर जमींदार हमारा सेवक तो जमींदार का सारा चीज हमारा ऑटोमेटिक है। तो भक्ति जो है भगवान को ही खरीद लेती है, इसीलिए भक्ति से बड़ा धन कोई नहीं। इसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे पास कोला में श्रीधर सबसे बड़ा धन है, एक दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। और इस लीला के दौरान उन्होंने दिखाया उनके हृदय में जो धन संपत्ति जिसका वो आनंद लूट रहे हैं, एक झलक उनके वाणी के द्वारा उनके हृदय की स्थिति जो है पूरे दुनिया को हमेशा के लिए भगवान ने दिखा दिया। तो इस तरह से ये सार है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ये भक्ति का अंग है। तो भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। अभी 5 दिन में नया साल, नए साल के लोग हर लोग कुछ क्या बोलते हैं, नहीं रेजोल्यूशन हाँ निर्धार लेते हैं, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा ये करूंगा वो करूंगा। तो कम से कम ये निर्धार हम ले सकते हैं कि जो जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो ऐसे चीज को हम स्वीकार करेंगे, जो भी भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल हो ऐसे चीजों को हम, और हमारे जीवन को हम ऐसा चलाएंगे सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, शरीर के प्रति परिवार के प्रति जो भी है समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, और उसको निभाते हुए लक्ष्य को कभी हम लक्ष्य से कभी नहीं भटके, तो हमारे जो प्रायोरिटीज जीवन का है वो बदलना चाहिए, वो रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा चला जाएगा एक एक क्षण आयु हर्द वही पुंसान उद्यन अन्न अस्तल चाहिए अन्न सौ। क्या सेलिब्रेट करना न्यू ईयर, एक साल गया मतलब स्मशान की ओर, एक साल पास में गए हम लोग बस, कौन सा बड़ा सेलिब्रेशन है। आपको बोले कि अभी समझ लीजिए यहां हम लोग सब बैठे हुए और आपको बोला जाए कि 10 मिनट के अंदर एक बम फूटने वाला है, सारा दरवाजा बंद है, अभी यहां बहुत सारा रसगुल्ला सब रखा हुआ है, खाओ, अभी 10 मिनट में बम फूटने वाला है, खाओ। बुद्धिमान व्यक्ति खाएगा नहीं, बोलेगा कैसा खाऊंगा, ऐसे मजा कैसा, बाहर निकलने का सोचूंगा। अफकोर्स इस जगह में मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, भक्त लोग हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर कोई पार्टी चल रहा है न्यू ईयर पार्टी और बोले भाइयों ठीक 12 बजे बम फूटने वाला है, अभी दारू पियो सब खाओ क्योंकि 10 मिनट बचा है 12 बजे के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा छोड़ो ये सब, हम बाहर जाना है पहले। इस तरह से भौतिक संसार में हर क्षण मतलब मृत्यु के एक क्षण पास में जा रहे हैं, और नए साल और भूलने के लिए बोलते दारू पी लेंगे सो जाएंगे बस बम नहीं फूटेगा। अरे कैसा नहीं फूटे, फूटने वाला हो तुम, दारू पी के भूल गए तो नहीं फूटने वाला, ऐसा थोड़ी है। तुम बोलेंगे नहीं 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 ये क्या साधु लोग यार पूरा अच्छा मजा निकाल देते हैं लोग आके, बोलते मृत्यु आ रहा है ये आ रहा है, हम तो अच्छा पार्टी करना चाहते हैं। अरे नहीं सत्य है, बता रहे हैं एक एक क्षण मतलब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। पर शास्त्र बताता है आयु हर दिवे पुमसान उद्यन अस्त, एक एक सूर्योदय और एक एक सूर्यास्त मतलब मृत्यु की एक दिन पास गए हम लोग। पर उस व्यक्ति के लिए मृत्यु नहीं है जो हमेशा श्रोतव्य कीर्तव्य ध्येय पूज्य सलिप्यता, जो हमेशा भगवान के स्मरण भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए एक एक साल मतलब भगवत धाम जाने का एक एक क्षण पास आ रहा है। मृत्यु उसके लिए भगवत धाम का रास्ता क्या बोलते हैं राजद्वार राजमार्ग खोल रहा है, तो बड़े प्रेम से गले लगाएगा मृत्यु को, बड़े जल्दी आओ ना इतना लेट क्यों। तो बात कहते हैं बिल्ली जो है चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, चूहे के लिए बिल्ली का मुंह सबसे बड़ा अपशकन है, सुबह सुबह दिख जाए तो। पर बिल्ली का जो बच्चा उसके लिए अपनी मां का जो मुंह है वो तो सबसे मुलायम बहुत अच्छा प्रेम का स्वरूप है, वो मुंह वही है। पर तुम्हारी चेतना क्या है, मृत्यु वही है, शरीर को मृत्यु आने वाली है, पर जो भोग करना चाहता है जो भगवान बनने की प्रभु तो जमाना चाहता है मृत्यु सर्वहरश्चा सब कुछ हर लेगी, पर जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसके लिए बुढ़ापा मतलब क्या ठीक से सेवा नहीं हो पाता है भगवान का, पर मृत्यु की राह देख रहा है क्योंकि जल्दी मृत्यु आएगी भगवान धाम जाएंगे वहां सच्चिदानंद शरीर मिलेगा तो 24 आवर सर्विस होगा नो प्रॉब्लम, भूख नहीं सताएगा प्यास नहीं सताएगा नींद नहीं सताएगा सेवा हमेशा कर सकते हैं थक नहीं जाएंगे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही में नए साल मतलब हमको कम से कम इसमें प्रगति करनी चाहिए क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आएगी किसको, क्या गारंटी है अगले महीना प्रवचन में कौन रहेगा कौन नहीं, हम खुद रहेंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कलयुग में तो एक छोटा एक्सीडेंट 12 के 12 मारे गए बस, एक सुनो का एक्सीडेंट लग गया नीचे खत्म हो गया अंतिम संस्कार उसका, कब क्या आएगा क्या मालूम, अभी है जो है वर्तमान है कम से कम सीरियसली लेना उसको बस और चलते रहना आगे। तो सुनहरा मौका रूपा जी की कृपा से उन्होंने हम सबको दिया है, तो इसकी गंभीरता को जानकर जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं अपने जीवन में साथ साथ में शरीर तो प्रगति हो रहा है मृत्यु की ओर, पर आत्मा जो है वो प्रगति हो रही कि नहीं भगवान की ओर वो देखना चाहिए, और उसके लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें जो प्रतिकूल है उसको त्याग, तब हमारा जीवन सफल। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, तो बहुत सरल तरीके से भागवत में हमें इसका सुझाव है, इसको स्वीकार करके हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निदाय गौड़ परिवार।